डॉक्टर डेनियल जे ट्रेयर, नीतिवचन सत्र दो। नीतिवचन 10-29, सद्गुण। 2024 डेनियल ट्रेयर और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेनियल जे ट्रेयर ईसाई जीवन के लिए नीतिवचन पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र संख्या दो है, नीतिवचन अध्याय 10-29, सदाचारी चरित्र। यह उस पर व्याख्यान दो है जिसे मैं ईसाई जीवन के लिए नीतिवचन पढ़ना कह रहा हूँ। नीतिवचन 1-9 हमें दो मार्गों से परिचित कराता है, ज्ञान का मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है और मूर्खता का मार्ग जो मृत्यु की ओर ले जाता है। अब जबकि इन अध्यायों ने हमें वफादार माता पिता द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की विरासत को अपनाने का आग्रह किया है, नीतिवचन 10-29 उस दिव्य रहस्योद्घाटन को एकत्रित और प्रस्तुत करते हैं जिसे प्रारंभिक खंड ने पेश किया है। इन अपेक्षाकृत बड़े संग्रहों में विषयों के छिटपुट समूह शामिल हैं जो नैतिक जीवन के संबंध में अंतर्निहित सुसंगतता का संकेत देते हैं। इसलिए हमें इस शिक्षण की मुख्य पंक्तियों को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्थित पैटर्न की आवश्यकता है और ईसाई परंपरा नीतिवचन के संबंध में नैतिक जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चित्रण प्रदान करती है। सकारात्मक रूप से चर्च वह प्राथमिक संदर्भ है जिसके अंतर्गत परिवार नैतिक निर्माण के लिए सृष्टि का घर किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छे चरित्र की ओर निर्देशित कर सकता है, इस दूसरे व्याख्यान के लिए हमारा विषय है। सद्गुण गहरे स्वभाव विकसित कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अच्छे की आत्तन पहचान और एहसास होता है, किसी को विशेष परिस्थितियों में क्या महसूस करना, सोचना और करना चाहिए। लोग सद्गुणों के साथ पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। इसलिए नीतिवचन युवाओं की सापेक्ष मासूमियत को खतरनाक रूप से अस्थिर मानते हैं। लोग अंततः किसी न किसी तरह से चरित्र बनाते हैं। मुख्य गुण विवेक, संयम, धैर्य और न्याय ईश्वर के प्राणियों के रूप में सभी मनुष्यों के लिए कुछ हद तक संभव हैं। मुख्य गुण मूल रूप से इस दुनिया में अच्छी तरह से रहने से संबंधित हैं। उनका एकमात्र बाइबल उद्धरण वास्तव में गैर प्रोटेस्टेंट कैनन सोलोमन की बुद्धि 8:7 में आता है, और यदि कोई धार्मिकता से प्यार करता है तो उसके परिश्रम गुण हैं, क्योंकि वह आत्मनियंत्रण और विवेक, न्याय और साहस सिखाती है। जीवन में मनुष्यों के लिए इनसे अधिक लाभदायक कुछ भी नहीं है। प्रकृति के साथ इस जुड़ाव और इस पुण्य योजना की ग्रीक उत्पत्ति को देखते हुए प्रमुख गुणों के बारे में बात करने से कुछ इंजील ईसाई संदेह पैदा हो गए हैं। फिर भी यह ढांचा ईसाइयों और वैकल्पिक नैतिक परंपराओं के बीच नागरिक और दार्शनिक जुड़ाव की संभावनाएं प्रदान करता है। साथ ही ये गुण कार्डिनल या प्रमुख हैं। वे हैं जिन पर नैतिक विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है, क्योंकि उनमें केवल व्यवहार ही नहीं बल्कि उचित इच्छा भी शामिल होती है। पाप में गिरने के बाद मनुष्य मोक्ष के अलावा अपनी भूख को उचित रूप से व्यवस्थित नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के भय के साथ एकीकरण के अलावा भगवान की रचना व्यवस्था की अखंडता के कारण कुछ हद तक विशेष गुण विकसित हो सकते हैं, लेकिन अंततः अपनी पूरी सीमा तक एकीकृत तरीके से इन प्रमुख गुणों के लिए भी भगवान के भय की आवश्यकता होगी। सृजन क्रम के कारण कुछ हद तक खंडित तरीके से गुणों की आंशिक प्राप्ति और किसी के जीवन में गुणों के समग्र पूर्ण एकीकरण के बीच यह अंतर वह है जिसे मैंने ओलिवर ओडोनोवन की पुस्तक पुनरुत्थान और नैतिक में उपयोगी पाया है। आदेश देना। इसके विपरीत धार्मिक गुणों को स्पष्ट रूप से मुक्तिदायी अनुग्रह की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वास्तविक विश्वास, आशा और दान प्राप्त किया जा सकता है और फिर उसका अनुसरण किया जा सकता है। ईश्वर के साथ सीधे व्यवहार करते हुए ये आध्यात्मिक वास्तविकताएं मानवता से ऊपर हैं, जैसा कि थॉमस एक्विनास कहते हैं। इसलिए उन्हें उचित रूप से मानव नहीं बल्कि अलौकिक या दिव्य गुण कहा जाना चाहिए। वे कहते हैं मानवीय नैतिकता से परे वे पवित्र आत्मा द्वारा दिव्य जीवन में भागीदारी के रूप हैं। धार्मिक गुण हमें ईश्वर के प्राणियों के रूप में हमारे वास्तविक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, लेकिन वे सृष्टि से हमारे मूल निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वे हमें अनुबंधित संगति में वापस लाने के लिए ईश्वर की पहल का परिणाम हैं, जो कार्डिनल गुणों के ईसाई अभ्यास को भी विशिष्ट बना सकता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस व्याख्यान में प्रमुख और धार्मिक गुण और सात घातक पाप या पूंजीगत बुराइयां, जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे, हालांकि वे सीधे नीतिवचन से उत्पन्न नहीं हुए थे, फिर भी वे फिट बैठते हैं, वे मेल खाते हैं पुस्तक की नैतिक शिक्षा, और वे हमें उस शिक्षा के अधिकांश मुख्य जोरों को व्यवस्थित करने का एक सहायक तरीका प्रदान करते हैं। गुण और दोष एक ऐसी भाषा प्रदान करते हैं जिसके भीतर हम नीतिवचन के निर्देशों की जांच, संरचना और सारांश कर सकते हैं। वे इस तथ्य को अच्छी तरह से पकड़ते हैं कि नीतिवचन केवल विशेष व्यवहारों को बढ़ावा देने या प्रतिबंधित करने में रुचि नहीं रखता है, बल्कि यह चरित्र को संबोधित करने के लिए व्यवहारों को देख रहा है। पहले व्याख्यान में मैंने पहले ही दिखाया है कि नीतिवचन नैतिक प्रगति और ज्ञान को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से माता पिता और वाचा समुदाय की आध्यात्मिक विरासत को अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नीतिवचन न केवल ठोस व्यवहार की बात करते रहेंगे, बल्कि ऐसा करते हुए चरित्र निर्माण को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार नीतिवचन ईसाई परंपरा के इन प्रमुख और धार्मिक गुणों के चित्रण के साथ संरेखित हो सकते हैं, लेकिन पूरक और परिष्कृत भी हो सकते हैं। नीतिवचन में इन गुणों का निम्नलिखित सर्वेक्षण उनमें से किसी के लिए विशेष रूप से दी गई हिब्रू शब्दावली पर निर्भर नहीं करता है। इसके बजाय हम जो करने जा रहे हैं वह प्रासंगिक अवधारणाओं के लिए विभिन्न संग्रहों को छांटना है, जिसमें किसी विशेष विषय के संबंध में शब्दावली और छंदों की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है। मैं विभिन्न कहावतों को उद्धृत करने पर काफी अधिक प्रीमियम लगाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि वे मौखिक मुठभेड़ों के लिए हैं और नीतिवचन उनके बारे में मेरी व्याख्याओं की तुलना में बहुत से काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए मैं यहां पर्याप्त उद्धरण रखने का प्रयास करने जा रहा हूं, ताकि नीतिवचन की सामग्री को न केवल सामने और केंद्र में रखा जा सके। मुख्य गुणों में से पहला विवेक दूसरों को विनियमित करने में उच्चक्रम का कार्य करता है, जबकि अन्य तीन गुण अपने विशेष क्षेत्रों में प्रमुख हैं। विवेक उन्हें नियंत्रित करता है। यह व्यक्तिगत स्थितियों की विशिष्टता का सम्मान करते हुए संकी जुनून के बजाय कारण से कार्रवाई और प्रतिक्रिया का आदेश देता है। न्याय तब ईश्वर और दूसरों से संबंधित हमारे कार्यों का उचित प्रतिपादन करता है। दृढ़ता सही जीवन को कठिनाई और अंतः मृत्यु का सामना करने में भी सहन करने में सक्षम बनाती है। संयम शारीरिक भूख को नियंत्रित करने वाला है। अब विवेक को डरपोक या नकलची होने के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, जैसा कि कैथोलिक चर्च के कैटेचिज्म में कहा गया है, विवेक वह गुण है जो हर परिस्थिति में हमारे सच्चे अच्छे को समझने और इसे प्राप्त करने के सही साधन चुनने के लिए व्यावहारिक कारण प्रदान करता है। यह नियम और उपाय निर्धारित करके अन्य गुणों का मार्गदर्शन करता है। जब हम नीतिवचन पर आना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि नीतिवचन की पुस्तक विवेक को कितनी दृढ़ता से महत्व देती है। अध्याय 1-9 तक का विषय ज्ञान प्राप्त करें और इसका संदर्भ दो तरीकों का सिद्धांत पूरी किताब में अंतहीन रूप से दोहराया गया है। विरोधाभासी समानता जो अक्सर होती है, खासकर नीतिवचन अध्याय 10-15 में, यह विरोधाभासी समानता जहां एक पंक्ति सिक्के के एक पहलू को बताएगी और फिर लेकिन और फिर विपरीत को बताएगी। यह विरोधाभासी समानता साहित्यिक दृष्टि से विवेक के इस मूल्य, ज्ञान के मूल्य और यह जानना कि विशेष परिस्थितियों में कैसे रहना है और मूर्खता से कैसे बचना है को पुष्ट करती है। नीतिवचन 10 से 29 में विवेक के मूल्य की अन्य विशिष्ट अभिव्यक्तियों में डिफॉल्ट मानवीय सोच और दिव्य ज्ञान के बीच विरोधाभास हैं। उदाहरण के लिए, मानव मन कई योजनाएं बना सकता है, लेकिन यह प्रभु का उद्देश्य है जो 19:21 स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार, जैसा कि अनेक श्लोक सुझाते हैं, विवेक सामाजिक रूप से आवश्यक है। माता पिता बुद्धिमान बच्चों से प्रसन्न होते हैं और विवेक शक्ति और सच्चा धन प्रदान करता है। और उन सभी सारांश कथनों के लिए छंदों की धाराएं हैं। दूसरे, विवेक के मूल्य से इसके घटकों की ओर बढ़ते हुए इसके घटकों का एक प्रमुख उदाहरण आगे की योजना बनाना है। उदाहरण के लिए, अध्याय 10 श्लोक 5 में, जो बच्चा गर्मी के दिनों में बटोरता है वह बुद्धिमान होता है, परंतु जो बच्चा कटनी के समय में सोता है वह लज्जित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आगे की योजना बनाते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अध्याय 29 श्लोक 20 में, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बोलने में जल्दबाजी करता है? ऐसे किसी भी व्यक्ति की तुलना में मूर्ख के लिए अधिक आशा है। यहाँ आगे की सोचने और जल्दबाजी से बचने का विषय इस तथ्य के साथ विलीन हो जाता है कि वाणी विवेक के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समय की दृष्टि से यह सत्य है। सही ढंग से बोला गया एक शब्द चांदी की सेटिंग में सोने के सेब की तरह है, 2:5:11। और यह सुनने के मामले में भी सच है, जो विवेकपूर्ण तरीके से जल्दबाजी से बचने का एक संबंधित रूप है। यदि कोई सुनने से पहले उत्तर देता है तो यह मूर्खता और शर्म की बात है, 1:8:13। बोली जाने वाली बुद्धि के स्थिति संवेदनशील चरित्र के एक और सामान्य उदाहरण के लिए और सामान्य रूप से नीतिवचन को अच्छी तरह से पढ़ना और उपयोग करना सीखने का एक बहुत ही सामान्य उदाहरण के लिए हम अध्याय 26 छंद 4:5 पर जाते हैं। मूर्खों को उनकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न दें, अन्यथा आप करेंगे स्वयं मूर्ख बनो। मूर्खों को उनकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो, नहीं तो वे अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरेंगे। क्या ये बैक टू बैक नीतिवचन सुझाव देते हैं कि नीतिवचन के संग्रहकर्ता को नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे, या किसी तरह नीतिवचन स्वयं का खंडन करते हैं? बिल्कुल नहीं। मुद्दा यह है कि कुछ स्थितियों में एक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और अन्य स्थितियों में दूसरी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। विवेकपूर्ण व्यक्ति वह है जिसकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि उसे यह समझ आ जाए कि किस स्थिति में किस प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इन कहावतों को पहले से सीखने से हमें स्थितियों की गतिशीलता को पहचानने और एक या दूसरी दिशा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। क्या मुझे स्वयं मूर्ख बनने से बचने पर ध्यान देना चाहिए? खैर, तो मैं उस विशेष स्थिति में किसी मूर्ख को उत्तर नहीं दूंगा। क्या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मूर्खता के प्रति संवेदनशील है और अपनी नजरों में बुद्धिमान नहीं है? क्या वे एक तरह से मुक्तियोग्य हैं? ठीक है, तो मुझे उस मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना चाहिए, इत्यादि। नीतिवचन की कई सच्चाइयां अवसरों और संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से आकलन करने को बढ़ावा देती हैं। हालांकि कोई जिस चीज से बचता है वह उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि वह क्या योजना बनाता है और उसका अनुसरण करता है, यदि इससे अधिक नहीं। संक्षेप में तो समझदारी माता पिता और अन्य बुद्धिमान लोगों की बात सुनने में निहित है, ताकि व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आत्मनिर्भरता के बजाय आत्मनियंत्रण और रणनीतिक योजना के विभिन्न रूपों के साथ साथ ज्ञान में अधिक से अधिक विकास को बढ़ावा दे। फिर हम पहले से ही ईश्वर के भय, मूर्खता से बचने, माता पिता पर ध्यान देने आदि से संबंधित विवेक के अधिग्रहण पर बहुत कुछ छू चुके हैं। यहाँ हम यह जोड़ सकते हैं कि विवेक प्राप्त करने में अक्सर सुधार का जवाब देना शामिल होता है। मूर्ख अपने माता पिता की शिक्षा को तुच्छ जानता है, परंतु जो चेतौनी को मानता है वह बुद्धिमान है 15:05। जो शिक्षा को अनसुना करते हैं वे अपने आप को तुच्छ समझते हैं, परंतु जो चेतौनी को मानते हैं वे समझ प्राप्त करते हैं 15:32। एक डांट एक समझदार व्यक्ति के मन में किसी मूर्ख पर 100 प्रहारों की तुलना में अधिक गहरा असर करती है 17:10। अधिक सकारात्मक रूप से सलाह से विवेक प्राप्त हो सकता है। सलाह के बिना योजनाएं गलत हो जाती हैं, लेकिन कई सलाहकारों के साथ वे सफल होती हैं 15:22। कैथरीन डेल रीली यहाँ टिप्पणी करती हैं कि यह किसी समिति के लिए सबसे अच्छा तर्क है जो मैंने कभी सुना है। फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि यह किसी समिति के लिए पर्याप्त अच्छा तर्क है। किसी भी मामले में जिन लोगों में भगवान के डर की कमी है वे जीवन के कुछ विशेष पहलुओं में विवेक के इस गुण को आंशिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनके निर्माता की सामान्य कृपा का धन्यवाद जो मानव संस्कृति को रेखांकित करता है और यहाँ तक कि इसराइल को अन्य कहावतों से उधार लेने और सीखने में सक्षम बनाता है। संस्कृतियाँ बुतपरस्त अपने जीवन को निर्मित व्यवस्था के तत्वों के साथ जोड़ सकते हैं और इस तरह मूर्खता से बचने, माता पिता की देखभाल करने, सुधार प्राप्त करने और सलाह लेने के माध्यम से कुछ विवेक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने पर उनका जीवन मानव उत्कर्ष के लिए भगवान की आधिकारिक योजना का अप्रत्यक्ष गवाह है और उनके पास भगवान के भय के अलावा पूरी तरह से एकीकृत समग्र व्यापक विवेक नहीं होगा। क्षमा करें, कंप्यूटर निष्क्रिय हो गया है। दूसरा प्रमुख गुण न्याय प्रकृति और अनुग्रह के बीच समान अस्पष्टता का सामना करता है। न्याय फिर से कैथोलिक चर्च के कैटेचिज्म को थोड़ा उद्धृत करते हुए ईश्वर और पड़ोसी को अपना हक देने की निरंतर और दृढ़ इच्छा शक्ति में निहित है। पूर्ण अर्थों में न्याय हमारे पड़ोसियों के प्रति जिम्मेदारी के साथ ईश्वर के प्रति धर्मप्रायणता को एकीकृत करता है। हमें प्रत्येक के अधिकारों का सम्मान करने और मानवीय संबंधों में सद्भाव स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है, जो व्यक्तियों और सामान्य भलाई के संबंध में समानता को बढ़ावा देता है। पुराने नियम के भविष्यवक्ता लगातार मूर्ति पूजा और अन्याय को एक दूसरे से जुड़े हुए मानते हैं। सामाजिक समस्याओं के निश्चित समाधान में न केवल पड़ोसियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ कार्य शामिल हैं, बल्कि उचित इच्छाएं भी शामिल हैं। व्यापक न्याय को साकार करने के लिए अंतः सही ढंग से व्यवस्थित पूजा की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले नीतिवचन कई अवसरों पर ईश्वर के समक्ष धार्मिकता न्याय की इस आवश्यकता पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए दुष्टता से प्राप्त धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। 10:02 दुष्टों को कुछ लाभ नहीं होता, परंतु जो धर्म के बीज बोते हैं उन्हें सच्चा प्रतिफल मिलता है। 11:18 कुटिल मनों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह निष्कलंक मन वालों से प्रसन्न होता है। 11:20 धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक स्वीकार्य है। 21:03 ऐसी धार्मिकता में केवल बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी शामिल होता है। मानव आत्मा प्रभु का दीपक है जो हर अंतरतम भाग की खोज करता है। 20:27 अंततः ऐसी धार्मिकता स्वयं को कार्य में प्रकट करती है। 20:11 न कि केवल अच्छे इरादों या उच्च आत्ममूल्यांकन में, जो नीति वचन में संकेतों को समझा सकता है कि कुछ लोग वास्तव में धर्मी हैं। 20:6-9 निःसंदेह बुद्धि और न्याय कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण त्रुटियों से बचने से ही उपलब्ध होते हैं। हालांकि पूर्ण अर्थ में दुष्ट न्याय को नहीं समझता है, लेकिन जो लोग प्रभु को खोजते हैं वे इसे पूरी तरह से समझते हैं। 28:5 इस कारण से जब दूसरी बात हम मनुष्यों के बीच न्याय की जांच करते हैं तो दान एक अर्थ में एक दायित्व हो सकता है, न कि केवल एक विकल्प। कुछ लोग मुफ्त में दान करते हैं, फिर भी और अधिक धनवान हो जाते हैं। दूसरे लोग देय राशि को रोक देते हैं। वहां दायित्व का नोट सुने और केवल कष्ट ही चाहते हैं। 11:24 धर्मी लोग गरीबों के अधिकारों को जानते हैं। दुष्टों को ऐसी कोई समझ नहीं होती। 29:7 ऐसा नहीं है कि गरीब स्वतः ही धर्मी होते हैं, लेकिन सापेक्ष प्रवृत्तियों के संदर्भ में निहितार्थ आशीर्वाद या प्रतिशोध के संबंध में नीतिवचन की कुछ गलत फहमियों के विपरीत है। सापेक्ष प्रवृत्तियों के संदर्भ में कभी कभी निहितार्थ यह होता है कि गरीब अमीरों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। 28:6 अमीर होते हुए भी कुटिल चाल चलने से गरीब रहना और खराई से चलना उत्तम है। इस तरह शायद केवल इसी तरह से नीतिवचन गरीबों के लिए एक तरजीही विकल्प की पुष्टि करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से यह नहीं मानता है कि धन स्वचालित रूप से दैवीय अनुग्रह से संबंधित है। नीतिवचन में धन के लगातार स्रोत के रूप में गलत तरीके से कमाए गए लाभ के खिलाफ कई चेतावनियां शामिल हैं। हम पहले ही अध्याय 10 और श्लोक 2 में दुष्टता से प्राप्त खजाने का उल्लेख देख चुके हैं। फिर अन्य पाठ भी हैं, जैसे 11:1 झूठा संतुलन भगवान के लिए घृणित है। 15:27 जो अन्याय के लाभ का लालच करते हैं वे अपने घराने पर उपद्रव करते हैं, परंतु जो घूस से घृणा करते हैं वे जीवित रहेंगे। कई ग्रंथ भी हिंसा पर रोक लगाते हैं। नीतिवचन 24:15-16 में यह स्वीकार किया गया है कि कभी कभी धार्मिकता दुष्टों को अपमानित कर सकती है और इस तरह उत्पीड़न का कारण बन सकती है। झूठे गवाह और अन्यायपूर्ण फैसले मानवीय अन्याय का एक और रूप हैं, जिसकी अक्सर निंदा की जाती है। 17:15 जो दुष्टों को धर्मी ठहराता है और जो धर्मियों को दोषी ठहराता है, वे दोनों यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। 19:05 झूठा गवाह बच नहीं पाएगा और झूठा बच नहीं पाएगा। 19:28 निकम्मा गवाह न्याय को ठट्ठों में उड़ा देता है और दुष्ट का मुंह अधर्म को निगल जाता है। एक बार फिर मैं समग्र चित्र में सुझाव दूंगा कि मानव समुदायों के लिए न्याय और विशेष लोगों के लिए धार्मिकता कुछ बुनियादी प्रथाओं के माध्यम से संभव है, जो सैद्धांतिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं। यदि लोग दूसरों पर अत्याचार नहीं करते हैं या उनके विरुद्ध हिंसा नहीं करते हैं, यदि वे अन्यायपूर्ण लाभ नहीं उठाते हैं या दूसरों की मदद किए बिना अपनी सारी संपत्ति जमा नहीं करते हैं, तो वे सीमित अर्थ में ही सही धार्मिक होंगे। यदि किसी समुदाय में ऐसे लोग हैं जो ऐसी धार्मिकता को अपनाते हैं, साथ ही न्यायाधीश और शासक भी हैं जो रिश्वत लेने से इनकार करते हैं और सच्चाई की तलाश करते हैं, तो परिणामी बुनियादी न्याय सभी के लिए खुशी ला सकता है। फिर भी कुल मिलाकर नीतिवचन ऐसे सद्गुणों की सीमा के बारे में थोड़ा आशावाद दर्शाता है। यह पुस्तक परमेश्वर के लोगों के बीच दुष्ट प्रथाओं से इतनी व्यापक रूप से चिंतित है कि इसके मानव विज्ञान को शायद ही आशावादी कहा जा सकता है। इसके अलावा पूर्ण अर्थ में न्याय में फिर से ईश्वर को, न कि केवल अन्य लोगों को जो देय है, देना शामिल है, और ईश्वर हृदय की जांच करता है। इसलिए जबकि पतन ने मानवीय सद्गुण या सांप्रदायिक न्याय की सभी संभावनाओं को नष्ट नहीं किया है, हमें प्रभु के भय की ओर प्रकृति को पूर्ण बनाने के लिए, वास्तव में संस्कृति को और अधिक मौलिक रूप से बदलने के लिए मुक्तिदायी अनुग्रह आवश्यक है, ताकि सृष्टि के लिए ईश्वर की योजना आ सके। फलित होना। तदनुसार अगला प्रमुख गुण धैर्य गरीबों और धर्मियों के लिए आवश्यक है कि वे ज्ञान के मार्ग पर होने वाले अन्याय को सहन करें। दृढ़ता साहस के साथ धैर्य का मिश्रण करती है। कैटेचिज्म को फिर से उद्धृत करते हुए, धैर्य वह नैतिक गुण है जो कठिनाइयों में दृढ़ता और अच्छे की खोज में निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह प्रलोभनों का विरोध करने और नैतिक जीवन में बाधाओं को दूर करने के संकल्प को मजबूत करता है। धैर्य का गुण व्यक्ति को भय, यहाँ तक कि मृत्यु के भय पर भी विजय पाने और परीक्षणों और उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम बनाता है। यह किसी को उचित उद्देश्य की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग करने और बलिदान करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए साहसी धैर्यवान व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति में जिस चीज की प्रशंसा की जाती है वह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं की जिद्दी खोज और समझ है, यहाँ तक कि संभावित रूप से महत्वपूर्ण लेकिन कम सामान खोने की स्थिति में भी। यह पीड़ा ही नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाती है, बल्कि यह उन वस्तुओं की प्राथमिकता है जिनके लिए भगवान ने हमें बुलाया है। निहितार्थ से दृढ़ता एक प्रमुख बिंदु है जिस पर नीतिवचन मानवशास्त्रीय रूप से संदिग्ध है। बहुत से लोग अच्छे खेल के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन माता पिता के निर्देश, निरंतर मार्गदर्शन और बार बार सुधार की आवश्यकता से पता चलता है कि नीतिवचन हमारी दृढ़ता या उसकी कमी के बारे में यथार्थवादी है। विवेक के पोषण की आवश्यकता से संबंधित यह वास्तविकता इस बात का उदाहरण देती है कि दार्शनिकों ने गुणों की एकता को क्या कहा है, कि एक गुण प्राप्त करना दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। न्याय प्राप्त करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, यह जानना कि किसी स्थिति में क्या देय है। लेकिन व्यक्ति को इस ज्ञान और धैर्य का भी पालन करना चाहिए। संयम की आकर्षक बाधाओं पर काबू पाने के लिए दृढ़ता भी आवश्यक है। गुण कुछ हद तक एकीकृत होते हैं, भले ही वे हमारे पास अलग अलग अनुपात में हों। वास्तव में उनमें से किसी एक को पाने के लिए आपके पास सभी गुणों में से कुछ न कुछ होना चाहिए। अब नीतिवचनों में दृढ़ता का विशिष्ट चित्रण मामूली है, भले ही निहितार्थ के अनुसार इसकी आवश्यकता हर जगह है। किसी को आश्चर्य नहीं कि दृढ़ता का अंतिम आधार ईश्वर है। प्रभु का नाम एक मजबूत मीनार है। धर्मी लोग इसमें भागते हैं और सुरक्षित रहते हैं। 1810 नीतिवचन विभिन्न प्रकार के कष्टों के प्रति सहनशीलता विकसित करने की आवश्यकता को पहचानता है और यह दर्द की गंभीरता को स्वीकार करता है। हृदय अपनी कड़वाहट जानता है और कोई भी पराया व्यक्ति उसका आनंद साझा नहीं करता। 14:10 हंसी में भी मन दुहखी होता है और आनंद का अंत दुर्हक होता है। 14:13 मनुष्य की आत्मा बीमारी को सह लेगी, परंतु टूटी हुई आत्मा को कौन सह सकता है। 18:14 सहन शक्ति न केवल आंतरिक जीवन को संबोधित करती है बल्कि बाहरी परिस्थितियों को भी संबोधित करती है। धैर्य से हाकिम को मनाया जा सकता है और कोमल जीभ हड्डियां तोड़ सकती है। 25:15 धर्मी लोग गंदे सोते या प्रदूषित सोते के समान हैं जो दुष्टों के आगे झुक जाते हैं। 25:26 दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भाग जाते हैं, परंतु धर्मी सिंह के समान साहसी होते हैं। 28:1 ईश्वर हमें धैर्य बनाए रखने के लिए विभिन्न सहायताएं प्रदान करता है। 17:17 एक दोस्त हर समय प्यार करता है और रिश्तेदार विपरीत परिस्थितियों को साझा करने के लिए पैदा होते हैं। 16:26 कार्यकर्ताओं की भूख उनके लिए काम करती है, उनकी भूख उन्हें उकसाती है। नीतिवचन धैर्य को केवल व्यक्तिगत वीरता की उपलब्धि के रूप में चित्रित नहीं करते हैं। परिवार और दोस्तों के सहयोग के साथ साथ कभी कभार आवश्यकता के अनुरूप गुण बनाना, जैसे भूख संतुष्ट करना, धैर्य उन प्राणियों के लिए ईश्वर के सर्वपर्याप्त प्रावधान को दर्शाता है जिन्हें समय का उपहार दिया गया है और जिन्हें तदनुसार चरित्र विकसित करना है। बुराई का धैर्यपूर्वक विरोध करने के अलावा हमें दूसरों की मदद करने में भी साहस दिखाना होगा। प्रसिद्ध रूप से नीतिवचन 24:10-12 यदि तू विपत्ति के दिन मूर्छित हो जाए और तेरा बल छोटा रह जाए, यदि तू उन लोगों को जो घात के लिए ले जाए गए हैं और जो लड़खड़ाकर घात करने को जाते हैं उनको बचाने से न रुके और कहे, देखो, हम यह न जानते थे, क्या वह नहीं जो आपकी आत्मा पर नजर रखता है, यह जानते हैं? और क्या वह सबको उनके कामों के अनुसार बदला न देगा? निश्चित रूप से यहाँ इस आरोप का दुरुपयोग किसी भी विचारधारा का समर्थन करने वाली वैध चरम कार्रवाई के लिए किया जा सकता है जो कोई व्यक्ति दावा करना चाहता है। नष्ट हो रहे लोगों को बचाने के लिए मुझे लोगों की हत्या करनी होगी। और हमने कुछ मामलों में इन आयतों के साथ इस तरह का दावा सुना है। हालांकि गुणों की एकता का अर्थ है कि धैर्य, विवेक, न्याय और इसी तरह के साथ संरेखित होता है। इसलिए साहसी कार्रवाई के संदर्भ में ईश्वर वास्तव में क्या चाहता है, इसके संबंध में एक व्यक्ति का बुद्धिमान होना बाध्य है। नीतिवचन 24:10-12 राजनीतिक साहस के लिए एक खाली चेक नहीं है। यदि आवश्यक हो तो यह उस व्यक्ति के लिए एक प्रोत्साहन टकराव है जो सही काम करना जानता है और उसे करने में विफल रहता है। James 4:17। अंततः धैर्य वृद्धों को एक विशेष गरिमा प्रदान करता है। जवानों की शोभा उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। 20:29। वृद्ध और समझदार लोग साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन भर बुराई को सहने और उस पर हमला करने का मौका मिलता है। सफेद बाल महिमा का मुकुट है। यह धार्मिक जीवन में प्राप्त होता है। 16:31 अंत में मुख्य गुणों में से संयम सुखों के आकर्षण को नियंत्रित करता है और निर्मित वस्तुओं के उपयोग में संतुलन प्रदान करता है। मनुष्य को जानवरों की तरह केवल सहज ज्ञान युक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छाओं को तर्क के अनुरूप नियंत्रित करना चाहिए। नैतिक जीवन को अत्यधिक बौद्धिक या भावनाओं के विपरीत बनाने से दूर यह जानबूझकर पहलू मानव प्राणियों के रूप में हमारे अद्वितीय ईश्वर प्रदत्त व्यवसाय का सम्मान करता है। हम अपनी पसंद के बारे में सोच सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। ऐसे संयम के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो कोई अनुशासन से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से घृणा करता है वह मूर्ख है। 12:01 हमारी इच्छाओं को शुरू में अनुशासन का स्वागत करने की बुनियादी सीमा तक बदलना चाहिए। इसके बाद वे अपनी संतुष्टि की प्रकृति में बदलाव ला सकते हैं। धर्मियों का पेट तो भूख तृप्त करता है, परंतु दुष्टों का पेट खाली रहता है। 13:25 यदि आपको शहद मिल गया है तो केवल उतना ही खाएं जितना आपके लिए हो, अन्यथा अधिक होने पर आप इसे उल्टी कर देंगे। 25:16 इसके विपरीत वर्तमान में शेओल और एब्डोन कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और मानव आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। 2720 संयम के साथ आने वाला विवेक बचत को प्रेरित करता है। 21:20 बुद्धिमान के घर में बहुमूल्य धन रहता है, परंतु मूर्ख उसे खा जाता है। संयम की कमी हमें विवेकपूर्ण बनने से रोकती है। 24:27 बाहर अपना काम तैयार करो, खेत में अपने लिए सब कुछ तैयार करो और उसके बाद अपना घर बनाओ। संयम के बिना जीवन का चित्रण तब और भी विशिष्ट हो जाता है जब हम अगले व्याख्यान में लोलुपता और वासना जैसी पूंजीगत बुराइयों का सामना करते हैं। इसलिए फिलहाल इस गुण का चित्रण यहाँ तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त हो सकता है। 25:28 संक्षेप में बताता है कि क्या दांव पर लगा है। जिसमें आत्मसंयम नहीं वह टूटे हुए नगर के समान है। निस्संदेह नया नियम गलातियों 5 जेम्स की पुस्तक में 1 पत्रस 2 पत्रस और 1 तीमुथियुस के कई अंशों में आत्मा के इस फल के महत्व को पुष्ट करता है। संयम पर बाइबल की शिक्षा उन प्रमुख गुणों के यथार्थवादी पैटर्न पर फिट बैठती है जिन्हें हम पहले ही रेखांकित कर चुके हैं। एक ओर ईश्वर के प्राणियों के रूप में सभी मनुष्य आत्मसंयम के कुछ बुनियादी मानकों को पूरा कर सकते हैं, कभी कभी ईश्वर के अनुबंधित लोगों की सापेक्ष शर्मिंदगी के लिए भी, जैसा कि पॉल 1 कुरिन्थियों 5:1 में सुझाता है। दूसरी ओर समग्र मूल्यांकन यहाँ मानव संस्कृति आशावादी नहीं है। मूर्ख बहुत हैं। बुतपरस्ती आम तौर पर दर्शाती है कि ईश्वर लोगों को मूर्खतापूर्ण मूर्ति पूजक बेलगाम जुनून की खोज में छोड़ देता है, जो अपमानजनक हो जाता है, जैसा कि रोमियो 1:1 से पता चलता है। और ईसा मसीह के प्रथम आगमन के बाद इन अंतिम दिनों में स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। लोग स्पष्ट मूर्खता के साथ सत्य का विरोध करते हैं, जिसे 2 तीमुथियुस 3 की तरह ईश्वर के बजाय प्रेमपूर्ण आनंद के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। इसलिए ईश्वर की कृपा से हमें अपवित्रता और सांसारिक जुनून को त्यागने और वर्तमान युग में आत्मनियंत्रित ईमानदार और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि धन्य आशा के बिना पतित मनुष्यों में संयम को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है। तीतुस 2:11-13 प्रमुख गुणों में से, जो वैसे भी सिद्धांत रूप में सृजन के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध हैं, हमारा अध्ययन अब विशेष रूप से मुक्ति से जुड़े 3 धार्मिक गुणों की ओर मुड़ता है। विश्वास, आशा और दान की रूपरेखा यीशु मसीह में दैवीय आत्म प्रकाशन से पूरी तरह से भरी हुई है, क्योंकि यह इसराइल के लिए ईश्वर के रहस्योद्घाटन को पूरा और प्रवाहित करता है। मसीह के व्यवसाय को आकार देने वाले महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती पुराने नियम में वहां के अनुबंधित लोगों के साथ भगवान के कार्य में दिखाई देते हैं। माना जाता है कि इन धार्मिक गुणों के लिए ढीली उपमाएं भी हो सकती हैं, जो अन्य जातियों के बीच क्रियाशील हैं। फिर भी अंततः ये सद्गुण के रूप हैं, जो ईश्वर की दयालु पहल और वाचा में ईश्वर के साथ संबंध पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले विश्वास के संबंध में, विश्वास की एक बुनियादी और व्यापक मानवीय आवश्यकता है, लेकिन हम सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण अर्थ में विश्वास सृष्टिकर्ता ईश्वर से शुरू और खत्म होता है। नीतिवचन के प्रासंगिक अंशों में से कई लोग ईश्वर के भय को सबसे पहले ईमानदार आचरण से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए 16:06 वफादारी और विश्वासयोग्यता से अधर्म का प्रायश्चित होता है, और प्रभु के भय से व्यक्ति बुराई से बचता है। निष्ठा, आस्था शब्दावली और प्रभु के भय के बीच समानता पर ध्यान दें। नए नियम में विश्वास की तरह यहाँ नीतिवचन में मार्ग पर चलने की शुरुआत और चल रही यात्रा के प्रत्येक चरण दोनों के लिए प्रभु का भय आवश्यक है। ईश्वर उस हृदय की परवाह करता है जिससे धर्मप्रायणता और आचरण उत्पन्न होता है। 15:08 दुष्टों का बलिदान यहोवा को घृणित लगता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। 28:9 जो मनुष्य व्यवस्था की नहीं सुनता, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। नीतिवचन में विश्वास का दूसरा पहलू विनम्रता है। तोरा के ईश्वर को दिल से प्यार करने का मतलब है अपने रास्ते पर न चलना। क्षमा करें, हमारा कंप्यूटर फिर से खो गया। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शिक्षा है और नम्रता आदर से पहले है। 15:33 प्रभु के भय और विनम्रता के बीच समानता पर ध्यान दें। 20:24 हमारे सभी कदम प्रभु द्वारा आदेशित हैं, फिर हम अपने तरीके कैसे समझ सकते हैं। यूनानियों के लिए विनम्रता कोई प्रमुख गुण नहीं था, लेकिन बाइबल परंपरा में यह प्रमुख है। जो घमंड को पाप की मूर्ति पूजक जड़ के रूप में देखता है, शायद अन्य पूंजीगत बुराइयों के लिए भी। हालांकि इस तरह के धार्मिक गुणों में इसका नाम नहीं लिया गया है, फिर भी विनम्रता नैतिक जीवन के ईसाई खाते के लिए महत्वपूर्ण है। आशा और दान में इसका घटक है, जबकि यह विश्वास की अवधारणा से विशिष्ट रूप से निहित है। विनम्रता के अपने आशीर्वाद हैं, जैसा कि 22:04 सकारात्मक रूप से दर्शाता है और 28:25 और 26 विपरीत रूप से जोर देते हैं। ऐसा विश्वासी व्यक्ति पाप स्वीकार करता है। 28:13 और 14 जो अपराध छिपा रखता है उसका सुफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सुखी वह है जो कभी निडर नहीं होता, परंतु जो कठोर मन का होता है वह विपत्ति में पड़ता है। धन, सम्मान, जीवन, सुरक्षा, दया और खुशी के अलावा ये सभी आशीर्वाद विनम्रतापूर्वक ईश्वर से डरने से जुड़े हैं। विनम्रतापूर्वक ईश्वर से डरने से ईश्वरीय शरण मिलती है और इस तरह अपने और अपने बच्चों के लिए आत्मविश्वास मिलता है। उदाहरण के लिए 14:26 और 27 देखें। किसी शासक के पक्ष या ऐसी किसी भी चीज पर भरोसा रखने के बजाय जिस पर हम भरोसा करने के लिए प्रलोभित होते हैं, जो इतनी क्षणभंगुर हो सकती है, हमें विनम्रतापूर्वक खुद को भगवान और भगवान की सुरक्षा के लिए सौंप देना चाहिए। फिर भी नीतिवचन में विश्वास में बुद्धिमत्ता शामिल है, विश्वसनीयता नहीं। 14:15 सरल लोग हर बात पर विश्वास करते हैं, परंतु चतुर लोग अपने कदमों पर विचार करते हैं। हमें न केवल हर बात पर विश्वास करने से बचना चाहिए, बल्कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। 25:19 संकट के समय अविश्वासी मनुष्य पर भरोसा करना बुरे दांत या लंगड़े पाव के समान है। जाहिर है हमें मूर्खों पर भरोसा करने से बचना होगा। ईश्वर का भय हमें ज्ञान की शिक्षा देता है, बौद्धिकता विरोधी नहीं। आस्था समझ चाहती है। आस्था के बारे में जो महत्वपूर्ण है वह उसका व्यक्तिपरक गुण नहीं है, जैसे कि वह तर्क के विपरीत हो, बल्कि इसका महत्व हमें भरोसेमंद वस्तुओं और अंतः ईश्वर से जोड़ने में है। इसलिए हमें बुद्धिमान शब्दों को सुनना चाहिए और अपने मन को ईश्वरीय शिक्षा में लगाना चाहिए। दूसरों को ऐसे शब्द बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हमारा भरोसा प्रभु पर बना रहे। 22:19 इसके संदर्भ में आशा और विश्वास का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जैसा कि इब्रानियों 11 कहता है, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का आश्वासन है, देखी न गई वस्तुओं का दृढ़ विश्वास है। जो कोई भी ईश्वर के पास जाएगा उसे विश्वास करना चाहिए कि वह अस्तित्व में है और वह उन लोगों को पुरस्कार देता है जो उसे खोजते हैं। इसलिए इस शब्द का बार बार उपयोग किए बिना नीतिवचन आशा को व्यापक रूप से संबोधित करता है, हमें आश्वस्त करता है कि भगवान वास्तव में उन लोगों को जीवन का आशीर्वाद देंगे जो धर्मी हैं, जबकि जो लोग ज्ञान का तिरस्कार करते हैं वे अंतः मूर्खता के घातक जाल में फंस जाते हैं। धर्मी की आशा आनंद पर समाप्त होती है, परंतु दुष्ट की आशा व्यर्थ हो जाती है। 10:28 तो निश्चित रूप से बुद्धि जीवन का एक वृक्ष है जिसके द्वारा मनुष्य फलने फूलने की आशा कर सकते हैं। 11:28-30 जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वे सूख जाएंगे, परंतु धर्मी हरी पत्तियों की नाई फूलेंगे। जो अपने घराने को उपद्रव करते हैं वे वायु के भाग होंगे और मूर्ख बुद्धिमानों के दास होंगे। धर्मी का फल जीवन का वृक्ष है, परंतु हिंसा प्राणों को हर लेती है। नीतिवचनों में आशा का केंद्र बिंदु वर्तमान समय है। आशा में विलंब करने से मन उदास हो जाता है, परंतु जो अभिलाषा पूरी होती है वह जीवन का वृक्ष है। 13:12 आंखों की ज्योति से मन प्रसन्न होता है और शुभ समाचार से शरीर तरोताजा हो जाता है। 15:30 फिर भी कहावतें भोली नहीं हैं। जीवन के बारे में इसकी समझ अस्थाई आशीर्वाद पर केंद्रित है, लेकिन इसमें भविष्य के वादे भी शामिल हैं, भले ही उनका अर्थ और दायरा अपरिभाषित रहे। आशा न केवल स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए बल्कि दूसरों में भी इसे बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। आशा रहते हुए अपने बच्चों को अनुशासित करें। उनके विनाश पर अपना मन मत लगाओ। 19:18 यहाँ शब्दावली सादगी के समय को संदर्भित करती है, जिसमें युवा लोग अभी भी मूर्खता के बजाय ज्ञान को चुन सकते हैं। लेकिन संदर्भ भाषा के व्यापक दायरे को भी सामने रखता है। यदि युवा लोग अच्छी प्रतिक्रिया दें, तो वे विनाश से बच सकते हैं और उनके माता पिता उनकी समृद्धि पर खुशी मना सकते हैं। बुद्धि युवाओं को दैवीय रूप से प्रदत्त भविष्य की शहद जैसी मिठास प्रदान करती है। 24:13-14 ज्ञान की खोज के लिए अन्य अस्थाई प्रोत्साहनों में दुश्मनों के साथ भी शांति से रहने का अवसर है। 16:07 फिर भी इसके विपरीत नीतिवचन आशा को दुष्टता, ताकत, धन और अन्य घातक विकल्पों से दूर कर देता है, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। नोट, नीतिवचन 11:07 उन पाठों के अलावा जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। जब दुष्ट मरते हैं तो उनकी आशा नष्ट हो जाती है और भक्तिहीन की आशा व्यर्थ हो जाती है। नीतिवचन 23:18 पापियों से ईर्ष्या करने या पेटू और पियक्कड़ों की संगति में अपनी आशा रखने के विरुद्ध चेतावनी देता है। नीतिवचन 24 दुष्टों के बारे में चिंता करने या दुष्टों से ईर्ष्या करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। बुराई का कोई भविष्य नहीं होता, दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा। आशा को मानवीय शक्ति या भविष्य की भविष्यवाणी में समझदारी से नहीं रखा जा सकता है। 27:1 कल के विषय में घमंड न करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस दिन क्या होगा। दुनिया को नकारने वाली ईसाई धर्म की नीचे की आलोचना के विपरीत बाइबल का ज्ञान दोनों को पहचानता है कि अच्छा उत्साह स्वस्थ है और इसे अक्सर अंतिम नहीं बल्कि निकटतम प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। ये यहाँ और अभी के प्रोत्साहन, एक उत्साहजनक शब्द, एक शांत दिमाग जो चिंता पर विजय प्राप्त करता है, अच्छी खबर और इसी तरह की चीजें केवल भगवान से डरने के लिए समर्पित जीवन के भीतर ही पूर्ण महत्व रखती हैं। जीवन को अंत में होना चाहिए, न कि केवल रास्ते के बीच में, और भगवान को अंततः अपरिहार्य असमानताओं को दूर करना चाहिए कि कैसे बुद्धिमान और मूर्ख यहाँ और अभी जीवन का अनुभव करते हैं। दुष्टों की सफलता को कमतर आंकने या नकारने की पुस्तक की कोशिशें प्रदर्शन के रूप में काम करती हैं, जो किसी भी कीमत पर इसके विपरीत स्पष्ट साक्ष्य को स्वीकार करती है। नीतिवचन की आशा तर्कहीन या भोली नहीं है, लेकिन यह हमें वर्तमान अनुभव से परे या जो हम स्वचालित रूप से देख सकते हैं, अपने तर्क को लागू करने में मदद करती है। इसलिए अंततः हम ईसाई गुणों के शिखर पर पहुंचते हैं। इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है, 1 कुरिन्थियों 13:13। ऑगस्टीन प्रमुख सद्गुणों को भी प्रेम के रूप में मानता है। वे कहते हैं, इसका मतलब यह है कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम संपूर्ण और बेदाग बना रहना चाहिए, जो कि संयम का कार्य है, कि इसे दुर्भाग्य से पहले हार नहीं माननी चाहिए, जो कि दृढ़ता का कार्य है, कि इसे उसके अलावा किसी और की सेवा नहीं करनी चाहिए, जो न्याय का कार्य है, और अंत में हमारा प्रेम चीजों की समझ में सतर्क रहना चाहिए, ताकि छल या धोखे से कमजोर न हो जाए, और यह विवेक का कार्य है। कुछ मायनों में विनम्रता सद्गुणों का मूल है और दानफल है। थॉमस एक विनाश कहते हैं, दूसरे अर्थ में दान बाकी सभी गुणों की जड़ और जननी है, क्योंकि नैतिक जीवन मूल रूप से भगवान और पड़ोसी से प्यार करने का मामला है। अपने अपने तरीके से विनम्रता और दान दोनों ही घमंड का विरोध करते हैं, मौलिक पाप जो मूर्ति पूजा की हमारी प्रवृत्ति को स्वार्थी दिशाओं में बदल देता है। मैं दान शब्द का उपयोग प्रेम शब्द के अनुपयोगी व्यापक अर्थों से बचने के लिए कर रहा हूँ। मैं दान के साथ यह भी व्यक्त नहीं करना चाहता कि भिक्षादान पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। दान मित्रता, माता पिता का प्रेम और रूमानी प्रेम जैसे अच्छे प्राकृतिक प्रेम को नष्ट करने या अछूता छोड़ने के बजाय परिपूर्ण बनाता है। फिर भी दान यीशु में विशिष्ट और निश्चित रूप से प्रकट होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण त्रिएक ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, जो हमें मसीह में छुड़ाता है। दान में दूसरों के प्रति ईश्वर के प्रेम के प्रकाश में उनकी भलाई की तलाश करना शामिल है। अब नीतिवचन में, जैसा कि हम उदारता और आशीर्वाद पर विचार करते हैं, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि नीतिवचन दान को लगभग एक दायित्व के रूप में मानता है, न्याय के साथ ओवरलैप होने वाली हर पहेली को हल किए बिना। नीतिवचन बस इसमें शामिल उदारता की धन्यता को चित्रित करने में व्यस्त हो जाते हैं। 11:17 जो दयालु हैं, वे अपने आप को प्रतिफल देते हैं, परंतु क्रूर लोग अपनी ही हानि करते हैं। 11:24-25 कुछ लोग मुफ्त देते हैं, फिर भी और अधिक धनवान हो जाते हैं। अन्य लोग जो देय है उसे रोक लेते हैं और केवल अभाव सहते हैं। उदार मनुष्य धनी हो जाएगा, और जो पानी देगा उसे पानी मिलेगा। एक आकर्षक रूपक में 19:17 कहता है, जो गरीबों पर दयालु है वह प्रभु को उधार देता है और उसे पूरा चुकाया जाएगा। संपत्ति के बारे में अंतर्निहित दृष्टिकोण यह है कि संयमित रूप से उपयोग किए जाने पर वे खुशी साझा करने का एक साधन हैं। जबकि असंयमित रूप से उपयोग किया जाता है, वे हमें गलत तरीके से खुशी का पीछा करने के लिए धोखा देते हैं। आज की समृद्धि के सुसमाचार सच्चे आशीर्वाद की प्रकृति पर समान रूप से और पर्याप्त रूप से जोर दिए बिना उदारता और आशीर्वाद के बीच संबंध पर जोर देते हैं। धन और स्वयं पर कब्जा करने के विरुद्ध नीति वचन की चेतावनियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए उदाहरण के लिए, जहां प्रेम हो वहां सब्जियों का रात्रि भोज मोटे बैल और उसके साथ घृणा की तुलना में बेहतर है। 15:17 दूसरे नीतिवचन में दान दया का विषय है। समय समय पर मदद हर किसी के लिए आवश्यक होती है, और भगवान दयालुता पूर्वक परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा करते हैं। हालांकि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सच्चे दोस्त होते हैं। कुछ दोस्त दोस्ती निभाते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों से भी ज्यादा करीब रहता है। 1824 जिस संदर्भ से यह कहावत उपजी है, उस संदर्भ में परिवार पर मजबूत निर्भरता को देखते हुए इसमें दोस्ती की एक उल्लेखनीय पुष्टि शामिल है। अगर एक दोस्त एक भाई की तुलना में करीब रह सकता है। परिवार के सदस्य हमेशा हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते। अपने मित्र या अपने माता पिता के मित्र को मत त्यागें। अपनी विपत्ति के दिन अपने रिश्तेदारों के घर न जाएं। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से पास रहने वाला पड़ोसी बेहतर है। 27:10 दया सिर्फ हमारे प्रियजनों या अन्य मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी है। धर्मी अपने पशुओं की आवश्यकताओं को जानते हैं, परंतु दुष्टों की दया क्रूर होती है। 12:10 तो फिर दान एक स्वभाव है जो किसी के जीवन में व्याप्त है। यह केवल उन मित्रों या वरिष्ठों के प्रति दयालु होना नहीं है जिनके माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा दयालु दान तीसरा मेलमिलाप को बढ़ावा देता है। बैर तो झगड़े को ढांप देता है, परंतु प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। 10:12 जो अपमान को क्षमा करता है वह मित्रता बढ़ाता है, परंतु जो विवाद पर मन लगाता है वह मित्र को अलग कर देता है। 17:09 इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मेलमिलाप करने वाले दान को त्रुटि का सामना करना पड़ सकता है। छिपी हुई मोहब्बत से खुली डांट बेहतर है। मित्र द्वारा दिए गए घाव अच्छे होते हैं, लेकिन शत्रु के चुंबन प्रचुर होते हैं। 27:5-6 लोहा लोहे को चमका देता है, और एक मनुष्य दूसरे की बुद्धि को तेज कर देता है। 27-17 झगड़े को बढ़ावा देने या अपने पड़ोसियों का तिरस्कार करने के बजाय हमें समुदाय की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें कभी कभी अपराधों की उपेक्षा करना शामिल हो सकता है, जबकि अन्य समय में शालीनता से उनका सामना करना पड़ सकता है। दान में शामिल होने के विशेष छंदों से परे चौथे और अंत में नीतिवचन में हम एक प्रेमपूर्ण शिक्षा शास्त्र का सामना करते हैं, जो लोगों को सद्गुण सीखने और सिखाने में मदद करने का एक प्रयास है। यह पुस्तक अपने इच्छित अंत और उस अंत के धैर्यपूर्ण कार्यान्वयन दोनों में ही प्रेमपूर्ण है। शुरुआती सादगी और रास्ते में युवाओं के सामने आने वाली कई संभावित कमियों को पहचानना। नीतिवचन की शिक्षा शास्त्र दृढ़ होते हुए भी कोमल है, शहरी साधारण सहिष्णुता से बचती है जो आज हमें बहुत लुभाती है। कहावत यथार्थवादी है, धैर्य अनंत नहीं हो सकता। एक निश्चित बिंदु के बाद मानवीय रूप से कहें तो लोगों में सुधार की संभावना नहीं है या असमर्थ भी हैं। इसलिए किसी को भी सुअर से पहले मोती ढालने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। दान का मतलब लोगों को बदलने की संभावना के बारे में भोलापन या क्षय नहीं है, जो बुद्धिमानों के लिए खतरनाक हो सकता है। दान मित्रों के लिए है, न कि केवल मूर्खों के लिए। इसमें संवेदनशील ज्ञान की आवश्यकता है कि हम दूसरों की मदद कैसे करें। जो भारी मन से गीत गाता है वह घाव पर लगे सिरके के समान है। कपड़े में पतंगा या लकड़ी में कीड़ा की तरह दुःख मानव हृदय को कुतरता है। 25:20-14:10 तो एक ऐसे व्यक्ति में जो वांछनीय है वह आपको एक मित्र या परिवार के सदस्य के रूप में ज्ञान बढ़ाने में मदद करेगा, वह है वफादारी। 19:22 और यदि हमें उस प्रकार की शिक्षा शास्त्र में भाग लेना है जिसे नीतिवचन लागू करने का प्रयास कर रहा है, तो दान को विवेक के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए जैसा पॉल फिलिप्पियों 1:9-11 में कहता है, यह मेरी प्रार्थना है कि आपका प्रेम ज्ञान और पूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ अधिक से अधिक बढ़ता जाए, ताकि आपको यह निर्धारित करने में मदद मिल सके कि सबसे अच्छा क्या है, ताकि मसीह के दिन में आप शुद्ध और निर्दोष हो सकें। परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के माध्यम से आने वाली धार्मिकता की फसल पैदा की है। यह डॉक्टर डैनियल जे ट्रायर और ईसाई जीवन के लिए नीतिवचन पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 2 है, नीतिवचन अध्याय 10-29, सदाचारी चरित्र।